8 जून दिन बुधवार का नमस्कार। भारत फैसल मोहम्मद अली से। वाशिंगटन में मोदी और ओबामा की भेंट। अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता के लिए किया भारत का समर्थन।
The progress that we've made around civil nuclear energy and I indicated our support for।
जानेंगे कि भारत को इसमें मिल सकती है कितनी कामयाबी। और अमित शाह ने जब उत्तर प्रदेश में कहा,
अरे राहुल बाबा आप क्या हमें पूछते हो, सबसे पहला काम तो हमने ऐसा किया है कि बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है।
तो कांग्रेस ने क्या दिया इसका जवाब? खबरें खेल जगत से भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। 3 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं में परमाणु अप्रसार, रक्षा और ऊर्जा के विकास के मुद्दों समेत कई अन्य मामलों पर चर्चा हुई। ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम में भारत की सदस्यता का स्वागत किया। साथ ही दोनों देशों के नेताओं ने चरमपंथी गुट जैसे अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और उनसे जुड़े अन्य गुटों से चरमपंथी खतरे के खिलाफ मिलकर काम करने पर प्रतिबद्धता जताई। केन्या में अधिकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल में देश में चुनाव आयोग के खिलाफ कई प्रदर्शन हुए हैं जिनके बारे में विपक्ष का दावा है कि वे सरकार समर्थित पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। सुरक्षा मंत्री जोसेफ नाइकसेरी ने कहा कि आदेश की अवहेलना करने के परिणाम सही नहीं होंगे। उन्होंने कहा, किसी के लिए भी सरकार के फैसले का विरोध करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके परिणाम बड़े होंगे और इसके परिणाम लागू भी किए जाएंगे। मैं पहले से यह बताना नहीं चाहता कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, लेकिन मैं सभी को आगाह करना चाहता हूं कि यह एक आदेश है और इसका पालन करना होगा। यह आदेश लागू किया जाएगा। ये थे कीनिया के सुरक्षा मंत्री जोसेफ नाइकसेरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के डुसेलडोर्फ में आग लगने से एक शरणार्थी शिविर के नष्ट हो जाने के बाद पुलिस इस संबंध में वहां रहने वाले 6 शरणार्थियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के अनुसार अस्थायी शिविर के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे एक विराट हॉल में रहने वाले सभी लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में 25 लोग घायल हुए हैं। यह इमारत डुसेलडोर्फ प्रदर्शनी केंद्र का हिस्सा है। विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर अपने अनुमानों को कम किया है। विश्व बैंक का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल 2.4% से बढ़ेगी, जो कि पहले हुए अनुमान से 0.5% कम है। बैंक के अनुसार विकासशील देशों में निर्यातक और तेल के उत्पादक कम कीमतों के साथ जूझ रहे हैं और धनी देश अभी भी साल 2008 में आए आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में लगे हुए हैं। बैंक के अनुसार निर्यात करने वाले विकासशील देशों का प्रदर्शन अच्छा है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक अस्पताल ने एक स्वस्थ बच्चे के जन्म की घोषणा की है जिसकी मां फरवरी के महीने से ब्रेन डेड अवस्था में है। बच्चे का वजन 2.35 किलो है और कल इसका जन्म ऑपरेशन के जरिए हुआ। बच्चे की मां के दिमाग में खून निकलने के बाद से उसे कृत्रिम रूप से जिंदा रखा गया था ताकि बच्चे को 32 सप्ताह की उम्र तक बढ़ने दिया जाए। बीबीसी समाचार।
बुधवार की सुबह का बीबीसी रेडियो का पहला प्रोग्राम नमस्कार भारत। आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से। सभी सुनने वालों का स्वागत है कार्यक्रम में। वाशिंगटन पहुंचने के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। बराक ओबामा, जिन्हें मोदी अपना दोस्त कहते हैं, दोनों की साल 2014 के बाद से ये 7वीं मुलाकात थी। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मोदी का ये 4था अमरीकी दौरा था। बराक ओबामा से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा,
आज की हमारी बातचीत में हमारे आर्थिक संबंधों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करना, एनर्जी के सेक्टर में क्लीन एनर्जी में फाइनेंस की बातों को और आगे बढ़ाना, साइबर सिक्योरिटी के लिए चिंता करना, इंटरनेट नेटवर्क में भारत भी इक्वली पार्टनर कैसे बने, उस दिशा में हमने कई विषयों पर बातचीत की है।
ये थे नरेंद्र मोदी। तो बराक ओबामा ने कहा कि वो परमाणु के क्षेत्र के खास समूह की मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन करते हैं।
The progress that we've made around civil nuclear energy and I indicated our support for
हमने असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत में जो सफलता पाई है और मैंने ये संकेत दिया है कि हम भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप का समर्थन करते हैं। वो तकनीकी सहयोग भारत को मुहैया हो जो उसकी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। हमने ये भी बात की कि किस तरह परमाणु प्रसार पर भी सहयोग किया जा सकता है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। बीबीसी हिंदी के वॉशिंगटन संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय नरेंद्र मोदी के दौरे और उनके कार्यक्रमों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आज भी वो मोदी और ओबामा की बैठक के कार्यक्रम से कुछ देर पहले ही लौटे हैं और टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। ब्रजेश, दोनों देशों के नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया, मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके अहम बिंदु क्या थे।
जी फैसल, एक तो जो आपने अभी अभी राष्ट्रपति ओबामा की जो बात आवाज़ सुनवाई जिसमें उन्होंने भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता हासिल करने में भरपूर सहयोग का वादा किया है, वहीं उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भारत इस साल के आखिर तक पेरिस में हुए जलवायु समझौते को औपचारिक तौर से अपना लेगा। दोनों ही देशों के बीच उस दस्तावेज पर भी सहमति हो गई है जिसके तहत दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य तंत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। और जैसा कि हमने पहले के कार्यक्रमों में कहा है कि इस पर सैद्धांतिक रूप से पहले ही सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब दोनों ही पक्ष इस दस्तावेज की जो भाषा क्या हो उस पर राजी हो गए हैं और एक अमरीकी अधिकारी के अनुसार बहुत जल्द इस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। दोनों ही पक्षों ने अमरीकी परमाणु ऊर्जा कंपनी वेस्टिंग हाउस को भारत में 6 परमाणु बिजली घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देने पर भी खुशी जताई है और बुश प्रशासन के दौरान हुए इस परमाणु समझौते के बाद ये पहली अमरीकी कंपनी है जिसे भारत में परमाणु बिजली घर लगाने की मंजूरी मिली है। और अधिकारियों का कहना है कि भारत और अमरीका दोनों ही जगह इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन विश्लेषकों की माने तो इन सभी मामलों में राष्ट्रपति ओबामा के लिए सबसे अहम था कि भारत जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते को औपचारिक रूप से जल्द अपना ले। जो साझा बयान जिसका आपने जिक्र किया उसमें ये कहा गया है कि अमरीका खुद भी इसी साल जितनी जल्दी संभव होगा इस समझौते को अपना लेगा और भारत भी इस लक्ष्य को हासिल करने में उनके साथ है। तो लेकिन जहां ओबामा प्रशासन के अधिकारी इस समझौते के बारे में भारत की रजामंदी को की बेहद उत्साहवर्धक तस्वीर पेश कर रहे थे, वहीं भारतीय अधिकारी इसको अपनाने के रास्ते में घरेलू कानूनी रुकावटों का भी जिक्र कर रहे थे। भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सरकार इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं उन पर गौर कर रही है।
ब्रजेश, ये बताएं कि बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस में कार्यक्रम है और उसको किस नज़रिए से वहां देखा जा रहा है, कितना अहम माना जा रहा है और कितना अहम है उनके लिए, मोदी के लिए भी?
जी देखिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अहम है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री होंगे जो कांग्रेस की साझा बैठक को संबोधित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी हद तक ऐतिहासिक है क्योंकि इसी कांग्रेस में उन्हें अमेरिका में 10 साल तक कदम नहीं रखने देने की एक तरह से नींव रखी गई थी और वहां वो एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता के तौर पर वहां पर जाकर के भाषण देने जा रहे हैं। दोनों ही पार्टियों में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, भारत को लेकर के काफी आप कह सकते हैं सकारात्मक छवि है। तो भारत को बहुत बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं, चीन के समकक्ष देखना चाहते हैं और एक सफल लोकतंत्र की उसे की तरह देखते हैं। लेकिन पिछले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की कई नीतियों की खासी आलोचना हुई है वहां पर, खासतौर पर आर्थिक क्षेत्र में सुधारों को लेकर। और साथ ही ये सवाल भी उठे हैं कि उनकी हुकूमत के दौरान जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की हिंसक कार्रवाई हुई है या जिसे धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं उसकी आजादी कमजोर हुई है, उस पर काफी मानवाधिकारों को लेकर के कई जो गैर सरकारी संगठन हैं उन पर जिस तरह की रोक लगाई गई है उन पर काफी सवाल उठे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक मौका होगा कि अपनी नीति स्पष्ट करे कांग्रेस के सामने। और ये जरूरी भी है क्योंकि अमेरिका में आप जैसा जानते हैं कि कोई भी जो पॉलिसी लागू होती है उसमें कांग्रेस की काफी अहम भूमिका होती है और वहां प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि कांग्रेस भारत की एक उस छवि को बरकरार रखे, क्योंकि अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कांग्रेस की सोच जो है अगर भारत के बारे में अच्छी रहे तो उनके
भारत को फायदा हो सकता है। ब्रजेश, जब आप वहाँ हैं हमारे साथ इस वक्त, तो ये भी बता जाएं कि अभी गहमा गहमी होगी वहाँ प्राइमरी को, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर जो वहाँ चुनाव हो रहे हैं एक तरह से, उसमें क्या नतीजा कोई आया है अभी तक?
गहमा गहमी बहुत हल्का शब्द है फैसल, यहाँ सबकी नजर उन्हीं उसी चुनाव पर ही लगी हुई है। आज 6 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, प्राइमरी चुनाव, और वैसे तो कल के कार्यक्रम में जैसा कि हमने बात किया था कि हिलरी क्लिंटन को वो संख्या, डेलीगेट की संख्या मिल गई है जो उन्हें उम्मीदवारी दे, लेकिन उनका यही कहना रहा है कि वो आखिरी वोट तक लड़ेंगी, और अभी सिर्फ न्यू जर्सी राज्य के परिणामों का प्रोजेक्शन आया है, जो अमेरिकी मीडिया आमतौर पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं फौरन वो प्रोजेक्शन कुछ राज्यों का कर पाती है एग्जिट पोल्स के आधार पर। तो वहां न्यू जर्सी में हिलरी क्लिंटन को विजेता घोषित कर दिया गया है, और अब से कुछ ही देर में अंदाजा है कि हिलरी क्लिंटन एक बड़ी भीड़ को संबोधित करेंगी, और वहां पहली बार औपचारिक तौर से वो कहेंगे कि मैं उम्मीदवार बन गई हूँ। ये अलग बात है कि उनके जो विरोधी हैं बर्नी सैंडर्स, वो कहते हैं कि जुलाई में जब तक अधिवेशन नहीं हो तब तक इसका फैसला नहीं होगा, और अभी सबसे बड़ा परिणाम जो है वो कैलिफोर्निया राज्य का आना बाकी है, लेकिन वहां की हार और जीत के बाद भी विश्लेषकों का कहना है कि हिलरी क्लिंटन के नंबर्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ओबामा को भी ये कहते सुना, और ब्रजेश उपाध्याय भी बता रहे थे कि मोदी के इस दौरे में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की दावेदारी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और बराक ओबामा ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं। स्विट्जरलैंड ने पहले ही भारत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हमारे सहयोगी अमरीश द्विवेदी ने परमाणु मामलों के विशेषज्ञ विद्याशंकर अय्यर से बात की, और सबसे पहले पूछा कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बनना चाहता है, मोदी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितना कामयाब होने की उम्मीद है?
ये मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो सोच सकते हैं कि वो इस बार न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे इतने आसानी से। चाइना के बारे में तो चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन ये बात सिर्फ चाइना पे नहीं टिकी है, चाइना के साथ और भी कई हैं हुआ मेंबर्स ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो इंडिया ने साइन नहीं किया है, और वो हैं ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, ऐसे काफ़ी हैं स्टेट्स जो चाहती है कि इंडिया और करे और करे और करे, तब जाके हम इनको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाएं। और अमेरिका ने प्रॉमिस किया था इंडिया को कि भाई हम अपना वादा पूरा करेंगे, आपको हम इन सारे एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का मेंबर बना देंगे और उसमें हम आपकी मदद करेंगे। अब ये अमेरिका के हाथ में नहीं है बात पूरी। पिछली बार जब जॉर्ज बुश ने फ़ोन उठाया था और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ बात की थी और कहा था कि भैया ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का एक्सेप्शन, ये वेवर दे दीजिए इंडिया को, वो इस बात पर किया गया था कि वो कह रहे थे कि हम इंडिया को नॉन प्रोलिफरेशन के टेंट में ले आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है संसार के लिए, हमें करना है। अब वो आर्ग्यूमेंट नहीं है।
चीन जो है वो विरोध करता है, इन प्रिंसिपल विरोध करता है कि भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए। वो पाकिस्तान का उदाहरण सामने रखता है कि अगर भारत तो पाकिस्तान क्यों नहीं। ऐसे में भारत का ये जो पूरा प्रयास है वो कैसे
सफल होगा? एक्चुअली बात और है, चीन ऑब्जेक्ट नहीं करता है, तो वो कहता है हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल या लॉ बने कोई भी नए मेंबर को एडमिट करने के लिए। आप कहेंगे ये तो एक्सक्यूज़ है, लेकिन देखिए चीन अब MTCR का मेंबर तो नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का मेंबर तो नहीं है, अब इंडिया बन जाएगा उसमें। 9 तारीख का जो मीटिंग है उसमें US वहाँ कहेगी शायद कि भाई पाकिस्तान को हम मेंबर नहीं बनाना चाहेंगे, तो चाइना ये कहेगा कि ये तो फिर सही नहीं है, आप इंडिया को बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को नहीं बनाना चाहते। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान ने ऐसे ही जानबूझकर अप्लाई किया है, ये जानते हुए कि एप्लीकेशन उनका एक्सेप्ट नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि कोई बड़ा कारण नहीं है मेंबर बनने का, एक्सेप्शन बना हुआ है इंडिया का यूरेनियम सप्लाई के लिए,
लेकिन भारत कहता रहा है कि उसका जो परमाणु इस्तेमाल है वो सैन्य नहीं है, वो किसी मिलिट्री यूज़ में नहीं लाएगा उसको, वो भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत है उसके लिए। फ़र्ज़ कीजिए कि ऐसा हो जाता है, वो NSG का मेम्बर हो जाता है, तो भारत को इससे तुरंत क्या फ़ायदा होगा?
तुरंत तो यही फायदा होगा कि एक तो स्टेटस और प्रेस्टीज बढ़ जाता है इंडिया का, क्योंकि यही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना था 1975 में हमारे परमाणु बम के एक्सपेरिमेंट के बाद 1974 में, तो जिस क्लब की शुरुआत हुई हमें अपोज करने के लिए उसी क्लब ने आज हमें अपना मेंबर बना लिया। सिर्फ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये कहता है कि कौन स्टेट न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और कौन नहीं, और उसमें इंडिया एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अंडर आता है। तो यदि इंडिया को एनपीटी साइन करना हो तो उसको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर से साइन करना पड़ेगा, जो इंडिया को अग्रीबल नहीं है। तो ठीक है, तो क्या एनपीटी इंडिया को न्यूक्लियर वेपन स्टेट का स्टेटस देगी? मेरे ख्याल से नहीं देगी। अभी इंडिया का फायदा सिर्फ इतना है कि स्टेटस और प्रेस्टीज बढ़ा, और इंडिया कहेगा कि देखो हम एक मेजर पावर हैं, जो वो अभी स्विट्जरलैंड ने हाँ कही है इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एनएसजी में। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड चाहता है कि वो एक नॉन परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसका। इंडिया भी यही चाहती है कि वो भी बन जाए एक नॉन परमानेंट मेंबर, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
ये थे परमाणु मामलों के विशेषज्ञ विद्या शंकर अय्यर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब बात भारत से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह कल उत्तर प्रदेश में थे और कासगंज की एक सभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उन्होंने फिर से निशाने पर लिया। जाहिर है कांग्रेस का है कुछ चुप रहती। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर जिस वक्त कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का मजाक उड़ रहा था, लगभग उसी समय कासगंज में अमित शाह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कुछ इस तरह खिल्ली उड़ा रहे थे।
अभी राहुल बाबा कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक रैली में निकले, किसी ने माइक इनके सामने रख दिया तो उन्होंने कहा, मोदी जी आपने 2 साल में क्या किया है? मुझे तो इतना आश्चर्य हो रहा है, राहुल बाबा पूछ रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह की टिप्पणी को एक नासमझ व्यक्ति की टिप्पणी कहकर शायद माफ कर दिया है। कांग्रेस के सांसद और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी की बात से शायद यही लगता है।
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन तो गए हैं, पर मैं नहीं समझता कि उनका कोई बहुत बड़ा अनुभव है। संविधान नहीं जानते, संसदीय परंपराएं नहीं जानते। अगर संविधान जानते तो हर किसी को पूछने का अधिकार, और संसदीय परंपरा जानते तो सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पूछने का अधिकार। तीसरी बात मैं आता हूँ, भाजपा को डर किसी से लगता है तो कांग्रेस से और गांधी परिवार से। इसीलिए सोते जागते राहुल गांधी और सोनिया गांधी उन्हें याद आते हैं।
यही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी के कथित सवाल का अपने अंदाज में जवाब दिया।
अरे राहुल बाबा, आप क्या हमें पूछते हो? सबसे पहला काम तो हमने ऐसा किया है कि बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है।
लेकिन प्रमोद तिवारी कहते हैं किसी बहाने नरेंद्र मोदी की वो सच्चाई अमित शाह की जबान पर आ गई जो कि सभी लोगों की राय है।
बिल्कुल ठीक है, अमित शाह जी ने कहा, उन्होंने बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। मैं इस पर जोड़ रहा हूँ, सिर्फ बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है, जो करता कुछ नहीं, सिर्फ बोलता रहता है।
अमित शाह ने कासगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा।
अरे अखिलेश बाबू, हमें तो 2019 तक का मैंडेट है, मगर आप बताइए, आपके 5 साल होने को आए, आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है।
लखनऊ में भी वो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे, आरोप लगाया कि सपा और बसपा अंदर से मिले हुए हैं। हालांकि ऐसे आरोप भाजपा पर भी लगते हैं कि वो सपा से मिली हुई है, लेकिन अमित शाह ने इसका जोरदार खंडन किया। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मीडिया जगत में ये चुटकी ली गई कि अभी तो ये पार्टियां अंदर अंदर मिलने की बात कर रही हैं, लेकिन चुनाव आते आते वास्तव में मिली होंगी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब एक नजर डालेंगे आज के अखबारों पे।
फैसल जी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अखबारों में कल की तरह आज भी मोदी की अमेरिका यात्रा ही छाई हुई है। साथ ही पहले पन्ने पर
मोदी में हो रहा है।
साथ ही पहले पन्ने पर हाल में उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुई हिंसा की न्यायिक जांच और बढ़ती महंगाई पर आरबीआई की नजर की खबरें भी है। अंग्रेजी के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग पर मंत्रियों की जासूसी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नजीब जंग गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय को दिल्ली के मंत्रियों की सूचना दे रहे हैं, जैसे मंत्रियों से कौन कौन मिलने आता है। विवाद एक चिट्ठी को लेकर हुआ है जिसमें गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि उन्होंने कितने अधिकारियों को नियुक्त किया है। जवाब में केजरीवाल ने लिखा कि उन्होंने कई कानून विशेषज्ञों से सलाह ली है और उनका मानना है कि संविधान और कानून के अनुसार आपको यह सूचना अधिकारवश मांगने का अधिकार नहीं है। अखबार में छपी एक अन्य खबर में कहा गया है कि
केंद्र और अरविंद केजरीवाल के बीच ठनी हुई है बीबी
जी। अखबार में छपी एक अन्य खबर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में चल रहे शौर्य प्रशिक्षण शिविर में विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवकों को कहा गया है कि वे अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए तैयार रहें। उधर बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार बढ़ती महंगाई ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को नीतिगत दरों में कटौती करने नहीं दी और मौद्रिक नीति की समीक्षा में आज उसने दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि सितंबर में बाजार में डॉलर की किल्लत हो सकती है। अखबार में छपी एक अन्य खबर के अनुसार ऋण वसूली ट्राइब्यूनल डीआरटी ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वह किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के ऋण की वसूली कर्नाटक उच्च न्यायालय में उनकी जमा की गई रकम से करने की शुरुआत करें। माल्या और उनकी कंपनियों ने किंगफिशर एयरलाइंस के परिचालन के लिए उच्च न्यायालय में 2000 करोड़ रुपए जमा किए थे। अपने श्रोताओं को एक राहत की खबर बता दूं, दी स्टेट्समैन के अनुसार मौसम विभाग का कहना है कि जून की 9 तारीख यानी कल दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच सकता है। इस बीच तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश हुई है। दी स्टेटमेंट में छपी एक और खबर में कहा गया है कि जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को हरी झंडी मिलने में देरी हो रही है और यदि इस परियोजना को जल्द पर्यावरण मंजूरी न मिली और देरी हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। उनका कहना है कि इन दो नदियों के जुड़ने से करीब 70 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। अंग्रेजी के अखबार दी पायनियर के अनुसार भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही एक अधिसूचना लाने वाला है जिसके तहत चांदी का वर्क बनाने की प्रक्रिया में जानवर के अंग का इस्तेमाल खत्म किया जाएगा। खबर के अनुसार भारत में केवल शाकाहारी यानी कि भैंस की अंतड़ियों की इस्तेमाल के बिना बने चांदी के वर्क की ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी। बताया गया है कि इसके उत्पादन में स्वच्छता और सुरक्षा संबंधित चिंताएं हैं। अंग्रेजी के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है उड़ीसा के बारे में जिसमें कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय स्टील मंत्री बृजकिशोर त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि साल 2014 में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने अपने आधिकारिक बैंक खाते से माओवादी नेता सब्यसाची पांडे को 45 लाख रुपए दिए थे।
चलिए पैसे ही दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए और अब आज की दिव्य आर्य की रिपोर्ट सुनते हैं। पूरी दुनिया में जो 1 अरब लोग शौच के लिए खेतों में जाते हैं उनमें करीब 60% भारत में ही हैं। हुकूमतें कोशिश कर रही हैं और जैसा कि अभी जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं वो स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं लेकिन लोगों की शौच की आदतें नहीं बदल रही हैं और उसके लिए किस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं, कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक जगह जहाँ दिव्य आर्य पहुँची। सुनिए एक
भोर का वक्त है और हम गांव के पास के खेत में खड़े हैं। ये 5 आदमी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने गेरुआ रंग की जैकेट्स पहनी हुई हैं और ये टॉर्च मार रहे हैं जैसे ही इन्हें कोई दिखता है खेत की तरफ बढ़ते हुए। और अभी इन्होंने एक बुज़ुर्ग आदमी को रोका है और ये मुझे बता रहे हैं कि ये शख्स रोज़ इन्हें यहाँ खेत में मिल जाते हैं जबकि सरकार ने इनके घर में एक शौचालय बनवा रखा है।
देहात गए अभी तो इतना सुधार है ही नहीं, भाई सुधार आएगा जब ही तो
यार माजिस।
अब धीरे धीरे अब समझा रहे हो तैसे अब सुधार आता जाएगा।
ऐसा लग रहा है मानो गश्त लगाई जा रही हो। आदमी औरतों और बच्चों के झुंड पूरे गांव में फैल गए हैं। मकसद है खुले में शौच यानी टॉयलेट करने के लिए निकले लोगों को रोककर शर्मिंदा करने का। 15 साल का हरी ओम दबी आवाज में शर्माते हुए कहता है,
हमें उसमें पसंद नहीं है, गर्मी से पलटी सी आने लगती है, गैस बन।
रोकने के बाद वॉलंटियर थोड़ा प्यार और थोड़ी सख्ती से समझाते हैं कि खुले में टॉयलेट जाने से सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर हरी से पानी का लोटा लेकर फेंक देते हैं ताकि उसे घर लौटना पड़े। भारत सरकार पिछले 30 सालों से शौचालय यानी टॉयलेट बनाने की स्कीम चला रही है पर साल 2014 में मोदी सरकार के तहत पहली बार इन स्कीमों का फोकस बिरादरी को बनाया गया। अब नए टॉयलेट बनाने से पहले वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।
गांव में औरत जब पर्दे में रहती है वो लाज इज्जत हया शर्म।
हरेंद्र पाल सिंह इनके लीडर हैं। वो मुझे बताते हैं कि यहाँ औरतों की इज्जत वाली दलील गांव वालों को ज्यादा समझ में आती है।
इनको हम ये कहते हैं कि जब तुम्हारी बहन बेटी सुबह लोटा लेके खेत में टट्टी करने जाती है और वो अंग जो दिखाने लायक नहीं है, केवल उसके पति को देखने का आंख है, वो अंग सारा गांव देखता, तुम्हारा जेठ देख रहा है, तुम्हारा ससुर देख रहा है, जब तुम्हारी इज्जत लाज है शर्म कहाँ चली जाती है, जब तुम्हारी उसमें वो नहीं होती आंखों में शर्म।
वैसे ज्यादातर औरतों को किसी दलील की जरूरत नहीं, उन्हें तो बस टॉयलेट चाहिए, ये तो मर्द हैं जो उन्हें रोके हुए हैं। हम पास के एक गांव में आए हैं, बिल्कुल पहले गांव जैसा ही है, छोटे घर जिन पर कोई पेंट नहीं हुआ है, खुली नालियां हैं, बहुत सारी भैंसे हैं, एक आध हैंडपम्प भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो देखने आए हैं वो तो यहाँ के शौचालय हैं। यहाँ भी सरकारी शौचालय बनाए गए हैं, कई घर के बाहर बनाए गए हैं, लेकिन ये जो शौचालय हैं हमें बताया जा रहा है इनमें से कई इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। इस शौचालय में बहुत सारे गोबर के कंडे रखे हुए हैं, इसको गोडाउन बना दिया गया है।
खेत में जाने में जैसे कभी
पूनम कुमारी के परिवार का टॉयलेट भी स्टोर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कपड़े और किचन का स्टोव रखा है।
अगर खेत में जाएंगे तो एक लोटा खर्च होगा, अगर लैट्रिन में बैठेंगे तो एक बाल्टी खर्च होगा, इसलिए हम पानी के थोड़ी पानी की समस्या खराब है, इसलिए बाहर जाते हैं। हम सुबह जल्दी जाते हैं अपनी मम्मी के साथ, जब तक उजीता नहीं निकला जब तक लैट्रिन बाहर जाके चले जाते हैं, उजीता हो जाता है तो इधर उधर सब लोग घूम लगाते हैं।
भारत में खेतों को जाती औरतों के रेप और कत्ल की कई खौफनाक वारदातें हुई हैं। मर्द इन खतरों को समझते तो हैं, फिर भी टॉयलेट्स को अहमियत नहीं देते।
As we say, old habits die hard.
निधि केसरवानी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन यानी क्लीन इंडिया कैंपेन की यहाँ की इंचार्ज हैं।
उन गांव की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, अब उनके आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, उनकी स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन हुआ है उन गांव में, इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि लोगों को भी ये जानकारी हो कि अगर हम खुले में शौच मुक्त करते हैं तो ये कोई प्रशासन का अचीवमेंट नहीं होगा, ये लोगों का और उस समुदाय का अचीवमेंट है।
निधि रोज कई चुनौतियों से रूबरू होती हैं, पर उन्हें यकीन है कि सरकार की ये स्कीम कागज पर ही नहीं रह जाएगी। दिव्या आर्य, BBC, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
वक्त है खेल का, अब सुनेंगे खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। IPL के बाद एक छोटा सा समय भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए विश्राम का रहा और अब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में 3 एक दिवसीय और 3 2020 मैच खेलेगी। पहले एक दिवसीय सीरीज खेली जाएगी जिसका पहला मैच 11 तारीख को हरारे में खेला जाएगा, जबकि 2020 सीरीज का पहला मैच 18 तारीख को खेला जाएगा। भारतीय टीम कल जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना हो गई। इससे पहले कल भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जब नए कोच और विराट कोहली को तीनों प्रारूप में कप्तान बनाए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया।
नहीं, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं गेम एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अ डिसीजन कि BCCI लेगी, इट्स नॉट अप टू मी टू डिसाइड ऑन दैट। कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा देखा गया है कि अभी खासकर जितने प्लेयर्स आ रहे हैं, इंग्लिश आई डोंट थिंक इज अ बिग बैरियर। इट कैन बी अ क्राइटेरिया बट इट कांट बी द ओनली क्राइटेरिया, यू नो कि हिंदी बोलना इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या चाहिए, जो हमारा कल्चर को समझे और जिस तरीके की हमारी अपब्रिंगिंग है, उन सारी चीजों को समझेगा, ही विल ऑलवेज बी बेटर विद अस।
वैसे ऐसा लंबे समय बाद है जब भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के नाम पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और घरेलू स्तर पर खेलने का लंबा अनुभव हासिल कर चुके KL राहुल, अंबाती रायडू और धवल कुलकर्णी के अलावा IPL में चमकने वाले युजवेंद्र चहल, मनीष पांडे, बरिंदर सरन और जसप्रीत बुमराह हैं। वैसे KL राहुल विराट कोहली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं। उधर रियो ओलंपिक में जगह बना चुके भारत के चारों टेबल टेनिस खिलाड़ियों के रैंकिंग में सुधार हुआ है। सौम्यजीत घोष 4 पायदान के लाभ के साथ 61वें, अचंता शरत कमल भी 4 पायदान के लाभ के साथ 69वें, महिला वर्ग में मोनिका बत्रा 128वें से 115वें और मोहम्मद आसफी 13 स्थान के लाभ के साथ 145वें स्थान पर पहुँच गयी है।
स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। आप हमें चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक घंटे में फिर मिलते हैं विश्व भारती के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।